अगली सूरत है मुमतहिना, 13 आयत है। अब छोटी छोटी सूरतें और कई सूरतें, इसलिए कोशिश करेंगे कि पूरी सूरत के बाद ही उस पर बात हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ु अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। हातिब बिन अबी बलता का नाम लिख लें, एक सहाबी थे। उनसे एक खता हुई थी कि उन्होंने अल्लाह के नबी का एक प्लान मुशरिकीन ने मक्का को लिखकर भेज दिया, इस उम्मीद के साथ कि इसकी वजह से वो इनके बच्चों को और बीवी को जो कि मक्का में फंसे हुए थे कुछ नहीं कहेंगे। अब ये किस्म की जंगी राज को जाहिर करने वाली बात थी, बहुत बड़ा गुनाह था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कैसे टैकल किया, आइए सुनते हैं। और कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हम तो मौका ढूंढते हैं कोई गलती करें और हम नोट करें, और अल्लाह के नबी लोगों की गलतियों को ओवरलुक करते थे। आपको अखलाक के नबी की इसमें मिसालें भी दिखेंगी। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, मेरे और खुद अपने दुश्मनों को अपना दोस्त ना बनाओ। तुम तो दोस्ती से इनकी तरफ पैगाम भेजते हो और वो इस हक के साथ जो तुम्हारे पास आ चुके हैं कुफर करते हैं। पैगंबर को और खुद तुम्हें भी महज इस वजह से जिला वतन करते हैं कि तुम अपने रब पर ईमान रखते हो। अगर तुम मेरी राह में जिहाद के लिए और मेरी रजामंदी की तलब में निकलते हो तो इनसे दोस्तियां ना करो। तुम इनके पास मोहब्बत का पैगाम पोशीदा भेजते हो, और मुझे खूब मालूम है कि जो तुमने छुपाया और वो भी जो तुमने जाहिर किया। तुम में से जो भी इस काम को करेगा वो यकीनन राह रास्त से भटक जाएगा। अगर वो तुम पर कहीं काबू पा लें और वो तुम्हारे खुले दुश्मन हो जाएं और बुराई के साथ तुम पर दस्तराजी करने लगें और दिल से चाहने लगे कि तुम भी कुफर करने लग जाओ, तुम्हारी खराबतें, रिश्तेदारियां और औलाद तुम्हें क़यामत के दिन काम ना आएंगी। ये सिर्फ अबू हातिब बिन अबी बलता को नहीं कहा गया, हम सबको भी कहा गया। वो अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा, और जो कुछ तुम कर रहे हो इसे अल्लाह खूब देख रहा है। बीवी बच्चों की मोहब्बत बंदे से बाज दफा ऐसी गलतियां भी करा देती है। जब वो खत पकड़ा गया तो अल्लाह के नबी के सामने पेश हो गए। हजरत उमर में ईमान की गैरत ही, कहने लगे अल्लाह के नबी इजाजत दीजिए, खातिब की गर्दन काट दो। इसने नबी का एक राज फाश कर दिया। बाकी सहाबा भी गुस्से में, अल्लाह के नबी रहमतुल आलमीन का नहीं सब्र, जरा इसको बोलने का मौका दो। यहाँ पता चला कि दूसरे की भी बात सुने फिर फैसला सादर करें। कहा सुनाओ खातिब, ये क्यों किया, मेरा राज दे दिया। कहा अल्लाह के नबी, ना मैं कुफर पे आया हूँ ना मेरा आपसे दिल खट्टा है, मैं आपके साथ हूँ। मुझे पता है जब आप मक्का वालों पे जाएंगे तो आप ही जीतेंगे, आप जिधर जाते हैं आप ही जीतते हैं। हम देख रहे हैं कि जहाँ जिस चीज़ में आपने हाथ डाला आप ही फतेहमंद हुए। मैंने तो ये एक एहसान किया मक्का वालों पे क्योंकि सबके रिश्तेदार उधर मौजूद हैं, मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, मेरे बीवी बच्चा मक्का में फंसे हुए हैं। अब जो ही पता चलेगा कि आप वहाँ जा रहे हैं फौज लेकर, तो जाहिर है कि जो वहाँ लोकल मुसलमान हैं उनको अजियतें मिलेंगी। तो मैंने एक एहसान कर दिया कि देखो इस खत के बदले में अब तो मेरे बीवी बच्चों को कुछ ना कहना। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह के नबी ने कहा कि हातिब को छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता ये बदर में शामिल हुआ था, और बदरियों को अल्लाह ने कह दिया अल्लाह ने तुम्हारी खताएं माफ़ कर दी। अल्लाह हमसे भी कोई ऐसी नेकी ले ले कि जिसके बाद अल्लाह अपने पास ही कह दे, हमें ना कोई बताए और हमें बताएगा भी कैसे कोई, क्योंकि नबूवत का तार, वही का तार टूट चुका है कि आज के वक्त कुछ भी कर लो मैंने तुम्हें माफ़ किया। नबी सल्लम का मिजाज देखिए, आप अपने बच्चों को भी देखते हैं, चूँकि पारे में चल रही है ना बातें, शौहर की कोई गलती सामने आ जाए, उनकी कोई वीडियो सामने आ गई, उनकी कोई तस्वीर सामने आ गई, कोई लिखा पढ़ा सामने आ गया, फतवा ना दीजिए अनलेस कि उनको बोलने का मौका दें। बेटे की कोई चीज़, बेटी की कोई चीज़, बस घर वालों के कंसर्न होता है ना, बाहर वालों से तो आंखें बंद कर लें। आपकी दोस्त की बेटी किधर जा रही है, वो कहाँ रह रही है, आपका फलां का कौन, ला हौल वला कुव्वते इल्ला बिल्ला। कोई डस्टबिन है आपका दिल दिमाग जिसमें हर गंदी चीज़ डालनी है, और जुबान आपकी को फिल्थ देने वाली चीज़ है कि आपने जिक्र भी जरूर करना है, हिपते देखा सुना। आज हम किसी के घर से एक चक्कर लगाते हैं, 10 बातें करते हैं, किसी ने कहा किसी के घर जाओ तो अंधे बन के जाओ, कुछ ना देखो उनका, और वहां से बाहर आओ तो गूंगे बन के आओ के कुछ ना जिक्र करो। तय में हमेशा गंद होता है, होटलों के बड़े बड़े लाउंज है जहाँ सजी होती हैं चीज़ें वो और है, और जिन किचन्स में खाने बनते हैं वो और है। तो याद रखिए अपनी जिंदगी का असूल बनाए, कभी किसी की कोई बुराई किसी से ना करें, किसी की सलाह कर सके उसको मेंशन कर दें, वो भी अच्छे तरीके से। यहाँ इतना बड़ा जुर्म है कि जान जाने वाला जुर्म था, लेकिन नबी के अंदर हिल्म था, आज हम में नहीं है। अल्लाह हमें यह हिल्म अता कर दे। इसीलिए अब आगे अलविला व अलबरा के ताल्लुक को समझने के लिए हजरत इब्राहिम की मिसाल है। कद कानत लकुम उसवतुन हसनतुम फी इब्राहिम वल्लज़ीना माह, मुसलमानों तुम्हारे लिए हजरत इब्राहिम में और इनके साथियों में बेहतरीन नमूना है, जबकि इन सब ने अपनी कौम से बरमला कह दिया कि हम तुमसे और जिन जिन की तुम अल्लाह के माँ सिवा इबादत करते हो इन सबसे बिल्कुल बेजार हैं। हम तुम्हारे अकायद के मुनकर हैं, जब तक तुम अल्लाह की वाहदानियत पर ईमान न लाओ हम तुम में हमेशा के लिए बुग़्ज़ और अदावत जाहिर हो चुकी। लेकिन इब्राहिम की इतनी बात अपने बाप से हुई थी कि मैं तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार ज़रूर करूंगा और तुम्हारे लिए मुझे अल्लाह के सामने किसी चीज़ का इख्तियार भी नहीं। ऐ हमारे परवरदिगार, तुझी पर हमने भरोसा किया है और तेरी ही तरफ रजू करते हैं, तेरी ही तरफ लौटना है। ऐ हमारे रब, तू हमें कुफार की आजमाइश में ना डाल, और ऐ हमारे पालने वाले हमारी खताओं को बख्श दे, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। लकद कान लकुम फीहिम उसवतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए इनमें अच्छा नमूना और उम्दा पैरवी है, खासकर हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह की और क़यामत के दिन की मुलाकात की उम्मीद रखता हो, और अगर कोई रूगरदानी करे तो अल्लाह ताला बिल्कुल बेनियाज है और तारीफ और हम्द के लायक है। क्या जब कैन करीब ही अल्लाह तुम में और तुम्हारे दुश्मनों में मोहब्बत पैदा कर दे। बोलिए आमीन। कुछ ज़रूरी है कि दुश्मन की गर्दन ही कटे, उसकी अना टूट जाए, उसके अंदर का खुन्नस ख़त्म हो जाए, तो आपका मेरा क्या जाता है? जन्नत बहुत बड़ी है, याद रखिए। सारी दुनिया के कुफार मुसलमान होकर जन्नत में आ जाएं तो आपकी मेरी जगह फिर भी सिक्योर है। मुसलमान का दिल बड़ा होता है, कभी किसी को गलत काम करते देखा करें तो रोया करें, अल्लाह इसको हिदायत दे दे, अल्लाह ही जहन्नुम में ना जाए। हजरत अबू हुरैरा के पास एक दफ़ा एक औरत आई, सजी समरी साफ मतलब खूबसूरत थी, कहने लगी गुनाह करती हूँ, यानी मतलब वो तवाइफ थी। कह रही ऐसी ख्याल आ गया आज कि अगर मैं तौबा करूँ तो बख्शी जाऊंगी। कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तो कबीरा गुना है। वो औरत खड़ी हुई, अपने आप को देख के कहती है औरत तुफ है तुझ पे, तेरा ये हुसन आग में जलेगा। रोती भी चली गई। बाद में जब अल्लाह के नबी आए तो ये वाकया आप तक पहुंच गया। आपने फौरन हजरत अबू हुरैरा को बुलाया, तुमने उसको अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया, जाओ ढूंढ के लाओ उसको अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाओ। और अबू हुरैरा फिर मदीना की गलियों में इस औरत को ढूंढने निकले। ये है हमारे बड़े, ये थे हमारे सलफ साले। कहाँ आपको सख्ती देखती है, सिर्फ मैदान जंग की सख्ती थी, बाकी मैदान अमल में रुहमाओ बैनहुम थे। इसीलिए अल्लाह कहते हैं दुश्मनों को दोस्त बनाओ, आज हमने अपने दोस्तों को दुश्मन बनाया हुआ और वो भी दीन के नाम पे। अल्लाह हमें हिदायत दे दे। अल्लाह को सब कुदरत है और अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी और तुम्हें जिला वतन नहीं किया, इनके साथ सलूक और एहसान करने और मुनसिफाना भले बर्ताव करने से अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता, बल्कि अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। कभी मेरे मुंह से कोई वेस्ट की तारीफ सुने तो लोग क्या कहते हैं, वेस्ट तो ऐसा वेस्ट तो ऐसा। मैं आपको सच बताऊं, वेस्ट में 90% लोग इग्नोरेंट हैं, मोर देन 90%। ये जो जंगें लगती हैं, जो हथियार उठते हैं, जो गजा में हुआ, जो बॉर्डर्स पे हो रहा है, यमन में हो रहा है, इधर उधर हो रहा है ना, एक छोटा सा गिरोह, जैसे हर माशरे में आप अपने पाकिस्तान इंडिया को देख लीजिए, आप सऊदी अरब को देख लीजिए, अमूमियत कैसी होती है। जैसे आज हमारे मुसलमान बच्चों को दीन का नहीं पता ना, आज के ईसाइयों को नहीं पता, यहूदियों को नहीं पता, उनको मुसलमान लफ्ज़ का कुछ पता ही नहीं है, वो तो ख्वाहिशों के गुलाम बैठे हैं, वो तो इग्नोरेंट है बेचारे। तो अगर उनकी कोई तारीफ कर दें तो ये उन काफिरों की तारीफ है जो मुसलमानों को काट रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा तासुब है। किसी ने मुझे कहा कि आप तो प्रमोट करती हैं वेस्ट को, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। अल्लाह के नबी दुश्मन की खूबी भी बता देते थे, वो तो दुश्मन भी नहीं है, वो तो सीधे सीधे लोग हैं, वो तो आपसे इतना डरते हैं, वो तो आपसे इतने खौफजदा है, वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपके पर्दे की रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपके हकूक की करते हैं, क्यों हर दूसरा जाना चाह रहा है उन मुल्कों में, आपने कभी सोचा? क्योंकि वहाँ इंसाफ है, वहाँ जुल्म नहीं है, वहाँ सिक्योरिटी है, वहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर है, वहाँ लोग सफाई कर लें तो उसको उतने ही पैसे मिलते हैं जितना किसी जगह जाकर कोई कुर्सी मेज पे बैठने वाला है। तो अब किसी दुश्मन की खूबी इसलिए उसका जिक्र ना करो। हम तो इसलिए कहते हैं कि हम मुसलमानों को अपने अंदर ही डालनी है, कोई ना देखना चाहे तो ना देखे, ना सुनना चाहे ना सुने, ना उनकी खूबी करे ना करे। मैं ये नहीं कह रही कि आप जरूर करें, लेकिन बात क्या है, हम अपनी इसलाह क्यों नहीं करते? हम जरा अपने अपने मुल्कों को देखें, हम अपनी सफाई का निज़ाम देखें, और जरा उनको देखें, हमारे अपने जुल्म को देखें। और टाइम उधर 4 बजे हमारी गाड़ियां फजर के लिए निकलें, वो नहीं निकलती, वो चंद लोग ही हैं जो निकल के पैदल जाएं या गाड़ी पे जाएं, और उनकी 4 बजे गाड़ियां बर्फ में गर्म हो रही होती हैं, वो कौन सी नमाज पढ़ने निकल रहे हैं, वो अपने काम पे जा रहे होते हैं। सूरज के निकलने से पहले वो टिप टॉप अपनी जगहों पे बैठे होते हैं। 80% लोग हाथ में शायद कॉफी का कप लेके रास्ते में कुछ नाश्ता कर लेते होंगे, उनके पास तो ये गरम खाने पराठे रोटियों का टाइम ही नहीं है। तरक्की ऐसे नहीं होती, अल्लाह को गलती नहीं लगती। याद रखिए, जो दुनिया में मेहनत करेगा, जो दुनिया में अल्लाह के रब्बानी असूलों पे चलेगा, जो नबी के तरीकों पे चलेगा, उसको दुनिया में भी तरक्की होगी। उनकी तरक्की इसलिए नहीं है कि वो काफिर हैं, इनकी तरक्की इसलिए नहीं है कि वो मुसलमानों को मार रहे हैं। ये तो वही बात है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अपने करतूत हम देखते नहीं, अपने दिल बुगज गंदगियां खराबियां और अपने कचरे नहीं देखते, और हम दुश्मनों को कहते हैं। तो ये सूरतें आपका बिल्कुल किबला दुरुस्त कर दें। अच्छी बात दुश्मन में भी है तो वो अच्छी है, बुरी बात अपने में भी है तो बुरी है। अच्छी अपने में होगी डबल अच्छी होगी, उसकी ज्यादा खुशी होगी। हमारा तो ख्वाब होना चाहिए कि मुसलमानों के मुल्क इनसे 10 गुना अच्छे हों, इनकी चीजें उससे अच्छी हों। हम एक चीज बना के लाते हैं, अभी महीना दो नहीं गुजरते चीज टूट के आपके हाथ में पड़ी हुई। क्यों मांगते हैं आप इम्पोर्टेंट सैनिटरी? हर एक साल बाद आप जाकर देखें नई बिल्डिंग जो है वो रो रही है, टूटियां लीक कर रही, पाइप लीक कर रही, जंग पड़ा है। क्यों भाई? नहीं जी, ये लोकल ले लिया था, अच्छा अब अगली दफा जरा आप इम्पोर्टेड लेंगे। कोई पर नहीं लगे हुए, वो भी अल्लाह के बंदे, ये भी अल्लाह के बंदे, और कोई तकाबुल नहीं है। माँ के सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं। अल्लाह सुबहाना तआला ने हर इंसान को पैदा किया, वो उसको बेहतर जानता है। आपको मुझे जजमेंटल नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात याद रख लें। इसीलिए फरमाए, ये जुमला नोट कीजिए, अल्लाह तआला तुम्हें सिर्फ इन लोगों की मोहब्बत से रोकता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाइयाँ लड़ी और तुम्हें देश से निकाल दिया, और देश से निकाल देने वालों की मदद की। और जो लोग ऐसे कुफार से मोहब्बत करें वो कतन जालिम है। हाँ, इस आयत का नंबर नोट कर लीजिए, आयत नंबर 9 है। अगर इस आयत पे कोई आज दुश्मन है तो हम उसे जंग करें, हम उससे बुगज रखें, हम उसे वो सब करेंगे जो नबी ने किया। तो आप एक ही लाठी से सबको तो नहीं हाँक सकते। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आएं तो तुम इनका इम्तिहान लो, दरअसल इनके ईमान को बखूबी जानने वाला तो अल्लाह ही है। बस अगर वो तुम्हें ईमानदार मालूम हो, हक मेहर की अहमियत, जो औरत कुफर से इस्लाम पे आती है तब उसके काफिर शोहर ने उसका हक मेहर जो दिया तब क्या करें? छोड़ो, नहीं जी नहीं देते, क्या करें, ये तो मुसलमान हो गई ना ना। और अगर खुदा ना खास्ता कोई मुसलमान औरत कुफर पे चली जाए तो उसके मुसलमान शोहर ने जो हक मेहर दिया तो उसका क्या करें? ये आयतें पढ़ के मैं कहती हूँ ये कुरान कुरान खानियों के लिए नहीं आया। इतने मुश्किल एक काम है, जब आप इसकी तफसीर के साथ क्लास में मेरे साथ बैठेंगी ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि अल्लाह ऐसे तोल तोल के तूने हकदारों को हक दिया, उसके शोहर का उसको दे दो, उसका उधर रेंट समझे दिस दैट दैट। ये तो पूरी एक सोसाइटी रीबिल्ट हो रही थी मदीना में। आपके मेरे लिए ये कुरान कागजों पे लिखा हुआ है, जिस दौर का ये कुरान था उनके ये डे टू डे इश्यूज थे। तो आइए अब जरा सुनिए, तो अब तुम इन्हें कुफार की तरह वापस ना करो, ये इनके लिए हलाल नहीं और ना वो इनके लिए हलाल है। और जो खर्च इन कुफार का हुआ हो वो इन्हें अदा करो, यानी इनके काफी शोहरों को इनका खर्चा दो, और इन औरतों को इनके मेहर देकर इनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं, और काफिर औरतों की नामूस अपने कब्जे में ना रखो, और जो कुछ तुमने खर्च किया हो वो भी मांग लो, और जो कुछ इन कुफार ने खर्च किया हो वो भी मांग लें। ये अल्लाह ताला का फैसला है जो तुम्हारे दरमियान कर रहा है। अल्लाह ताला बड़े इल्म और हिकमत वाला है। तर्जमे से भी आपको फील तो हो रहा होगा कि बहुत कुछ है इसके अंदर। क्या सोसाइटी बिल्ट हुई थी, क्या वहाँ हकूक थे, क्या वहाँ बीवियों के हक थे, शौहरों के थे। आज वेस्ट तो उसका अशरे अशीर भी नहीं है, वो औरतों को हकूक दे रहा है, अगर मर्दों को दे रहा है, बच्चों को दे रहा है, उनको मनी दे रहा है, पॉकेट मनी दे रहा है, वो तो अशरे अशीर भी नहीं। आज आप इस्लाम को बिलफेल नाफिज करके देखिए, हर बंदे को तोल तोल के तराजू में उसके हक मिलेंगे। हमारे हक क्या मिलने हैं? आपकी चीज़ों पर कोई कब्जा कर ले आप क्लेम नहीं कर सकते, आप घर किराए पे दे दें किराया नहीं मांग सकते, खाली करा ले तो घर देकर आपको रोना आएगा कि इसको मैंने सर में मारना है। आज हम वो मुसलमान है, शर्म आती है, करतूत नहीं अच्छे, हमारा अखलाक नहीं अच्छा, हमारे मामले नहीं अच्छे, नमाजों का हाल अल्लाह ही जानता है कि अंदर क्या पढ़ के आते हैं, तरावियों में पता नहीं क्या अंदर सोच चल रही होती है, और तहज्जुदों में हमारा क्या हाल है ये अल्लाह ही जानता है। एक गिरोह अल्लाह ने हमेशा हक के लिए महफूज रखा हुआ है, उलमा का गिरोह है, हुफाज का गिरोह है, फुकहा का गिरोह है, वो तो हमेशा ही लीट हुए, लेकिन आम पब्लिक को देखिए तो नमाज की समझ नहीं आ रही होती, बाकी क्या समझ आनी है। फिर एक और लॉ देखिए, वह इनफातकुम शय मिनजवाजिकुम इलल कुफार, और अगर तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाए और कुफार के पास चली जाए, फिर तुमको इसके बदले का वक्त मिल जाए तो जिनकी बीवियां चली गई हैं इन्हें इनके खराजात के बराबर अदा करो, और इस अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो। वक्त ही नहीं है कि मैं आपको ये आयत सिखाऊं, बस ये कह दीजिए अल्लाह मसल्ले अला मोहम्मद। कैसे प्यारे कवानीन नबी के जरिए अल्लाह ने हमें दिए। ऐ पैगंबर, जब मुसलमान औरतें आपसे इन बातों पर बैत करने आएं कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी, अपनी औलाद को ना मार डालेंगी और कोई ऐसा बख्तान ना बांधेंगी जो खुद अपने हाथों पैरों के सामने गढ़ ले, और किसी नेक काम में तेरी बेहुक्मी ना करेंगी, तो आप इनसे बैत कर लिया करो और इनके लिए अल्लाह से मगफरत तलब करें, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और माफ करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, ऐ मुसलमानों तुम इस कौम से दोस्ती ना रखो जिस पर अल्लाह का गजब नाजिल हो चुका, जो आखरत से इस तरह मायूस हो चुके कि जैसे मुर्दा अहले कब्र से नाउम्मीद है। इससे खुल के और क्या सूरत होगी। पूरी सूरत ने आपको अल्लाह के लिए दोस्ती और अल्लाह के लिए दुश्मनी की सारी चीजें सिखा दी हैं। अल्लाह करे कि हम सीखने वाले बन जाए। तदब्बुर करते हैं इन आयात पे, लोगों के गलत तरीकों से अलग होना है, इनसे दुश्मनी नहीं करनी। एक जुमला लिखिए, इस्लाम की दुश्मनी कुफर से है, काफिर से नहीं। कुफर खत्म हो गया तो फिर वो तुम्हारा मुसलमान भाई है। किसी काफिर से दिली लगाव नहीं रखना, ये दुनिया और आखरत में किसी काम ना आएगा। अल्लाह के दुश्मन हमारे दोस्त नहीं हो सकते। इस पे दिल को जमा लीजिए। कुरान से रहनुमाई, आपकी औलाद और रिश्तेदारियां आपके लिए बेफायदा होंगी अगर इनकी खातिर आपने अल्लाह का हुक्म छोड़ दिया। नस्ब भी पीछे रह जाता है जहां अमल साथ छोड़ दे। अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने तमाम मामलात इसके हवाले कर दें। दोस्त हो या दुश्मन, हर एक के साथ अदल और इंसाफ से काम लीजिए। गौर व फिक्र, मुसलमानों के लिए मुशरिक से निकाह करना जायज़ नहीं, खुद को धोखे में नहीं डालना। अल्लाह की खातिर मोहब्बत और दुश्मनी करना ईमान की मजबूती का जरिया है, इन दोनों से गफलत बरतना मुनासिब नहीं। इस्लाम और इसकी नसीहतों से एराज का नुकसान इंसान खुद उठाता है। अल्लाह का दीन लोगों का मोहताज नहीं, इम्तिहान मार्फत का रास्ता है, और लोगों की हकीकत तजर्बे के बाद पता चलती है, और तजर्बे के बगैर काम करने पर नदामत उठानी पड़ती है। मोमिन कैयस होता है, समझदार होता है। चलिए अब आगे देखिए सूरह सब, आप कह लीजिए ये है रब्बानी मिशन की तकमील का रब्बानी नुस्खा। अल्लाह के दीन को गालिब करने वाली जमात या गिरोह या इंस्टीट्यूट या मस्जिद या कोई एक फर्द जिस पे भी याद फिट हो जाए, अगर वो चाहता है कि अल्लाह का दीन गालिब आए, उसके साथ भी वही सब कुछ हो जो अल्लाह के नबियों के साथ और बाद में अल्लाह वालों के साथ हुआ, तो सूरह सफ पे अमल कर लो। और सूरह सफ की पहली आयत पे अमल कर लो तो बाकी बातें तुम्हें समझ आ जाएंगी। सिर्फ 14 आयत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बहलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। बोलिए सुबहानल्लाही व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ज़मीन आसमान की हर हर चीज़ अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है, और वही गालिब हिकमत वाला है। ऐ ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। ये है जी पहली बात। ख़त्म भी कर दो ना, इस पे बात तो पूरी हो गई कि मोमिनों और मुसलमानों तुम्हारे कौल व फ़ेल में तजाद क्यों है। तुम नमाज में जो अल्लाह से कहते हो अमल में वो क्यों नहीं दिखता। जो तुम्हारी किताबों में लिखा है वो इस्लाम की दर है, और जिस पे तुम अमल कर रहे हो वो इस्लाम की दर से लिया है तुमने। तुम जो करते नहीं इसका कहना अल्लाह को सख्त नापसंद है। बेशक अल्लाह तआला इन लोगों से मोहब्बत करता है जो इसकी राह में सफ बस्ता जिहाद करते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई इमारत है। टीम बिल्डिंग, कॉम बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, इत्तहाद और इत्तफाक, ये है इस। आज तुम्हारे दिल इतने खट्टे हैं कि हम अपने से अलग मसलक वालों को कई दफा मुसलमान ही नहीं समझते। जन्नती होना तो दूर की बात है। अपनी जमात वालों से बाहर वालों को हम जमात से निकला हुआ नहीं, इस्लाम से निकला हुआ कहते हैं, और बात हम करते हैं दुनिया में इस्लाम आ जाए नहीं आएगा। सॉरी, शीरो शकर किया आपने क्या। आप मौलाना खाली की वो पोएम है, कभी आप भी पढ़ के रोते होंगे ना। कि वो अल्लाह का नबी, वो सिराज मुनीर बनकर आया, जिसने लोगों को कमरों से पकड़ पकड़ कर आग के घड़ों से उठाया था। फन कजक मिनहा की कैफियत दी थी, बिखरी हुई कौमत, बिखरी हुई रस्सियों को, औस और खजरज के कबीलों और मक्का वालों को कैसे दोस्त बना दिया। कहीं पानी पिलाने पे झगड़ा, वहां घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा, और अल्लाह के नबी आए और क्या बना गए, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। ये सूरह सफ के साथ लिख दें, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ये आम कौम नहीं है, कुंतुम खैर उम्मत नुखरीदत, कहाँ हमें आज अपनी ये वैल्यू बताएं। और ये बातों से नहीं होगी, ये हमारा वो जोम नहीं है जो यहूद को था कि नहनो अहिब्बाउ लन तमस्सन नार इल्ला अय्यामा मादूदा, ये नहीं है। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, मगर कब, जब किरदार साजी होगी। आदम किरदार नहीं है। आज उम्मत मुस्लिमा उम्मत मोहम्मदिया जिस तस्बीह की डोरी खुल जाए और उसके दाने जमीन पे बिखर जाए वैसी हुई हुई है। हैं हम कीमती लेकिन रुल रहे हैं पाँव में, हमें नहीं पता कि हम क्या थे। हम सच्चे मोती थे और हम छोटे छोटे कह लीजिए कि जरकोन्स और आर्टिफिशियल नगीनों जितने बन गए आज, छोटी छोटी बातों पे मर जाते हैं, हमारी जान निकल जाती है। हम जैसे लोगों से अल्लाह दीन का काम ले, अल्लाह हमारी जगह से इस्लाम गालिब करे, अभी ये ख्वाब है। इसके पीछे ये कुरान की तरबियत की ज़रूरत है। कुरान बंदे को गाड़ के नया इंसान बना देता है, और फिर वो जो उम्मत बनती है तो वो कहते ना कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आपके कुरान की ये बातें तो गैर मुस्लिम आपसे ज़्यादा पढ़ते हैं, वो जो तरक्कियाँ कर रहे हैं वो आपके कुरान से ले लेके कई असूल पढ़ गए, और हम बैठे हैं इसको सिर्फ मरने वाले पे सारा पढ़ दो, तुम पढ़ दो ना बहन, तुम पढ़ दो, अच्छा इतनी दफ़ा, अच्छा 1,25,000 दफ़ा आयत करीमा पढ़ दो, ये कर दो। हम तो इतनी गैर हकीकी कौम इस वक्त बने हुए हैं, जिस कौम से बंदे ना प्यार करें अल्लाह करता होगा। ये तो इस कलमे तौहीद ने आपको मुझे बचाया हुआ है, जो नमाजों के पढ़ने ने अल्लाह की रहमत से हमें बचाया हुआ है। अमलन तो हम बिल्कुल अंदर से खोखले हो चुके हैं, ना किरदार है ना कोई हमारे अंदर चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, याद करो जबकि मूसा ने अपनी कौम से कहा है मेरी कौम के लोगों तुम मुझे क्यों सता रहे हो, हालांकि तुम्हें बखूबी मालूम है कि मैं तुम्हारी जानिब अल्लाह का रसूल हूँ। बस जब वो लोग टेढ़े ही रहे तो अल्लाह ने इनके दिलों को और टेढ़ा कर दिया। ये भी असूल लिख लीजिए, फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, क्यों, इसलिए कि वल्लाहु ला यहदी अल-क़ौमा अल-फ़ासिक़ीन, और अल्लाह ताला नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। पिछली कौमें चुनी भी थी लेकिन जब उनके करतूत खराब हुए, उनका किरदार गिरा, अल्लाह ने उनको पटक के मार दिया। यहूद को पीछे किया तो नसारा को ले आए, कैसे, वही क़ाल ईसा इब्नु मरियम, और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा है मेरी कौम यानी बनी इसराइल मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मुझसे पहले की किताब तौरात की मैं तस्दीक करने वाला हूँ, और अपने बाद आने वाले एक रसूल की मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ जिनका नाम अहमद है। फिर जब वो उनके पास खुली दलीलें लाए तो वो कहने लगे ये तो खुला जादू है, इस शख्स से ज़्यादा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे, हालांकि वो इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है और अल्लाह से जालिमों को हिदायत नहीं करता। इरादे क्या हैं इनके इस्लाम के बारे में, इसको भी हाईलाइट कीजिए, पीछे पढ़ चुके हैं, ये आयत आ चुकी है लेकिन यहाँ उसकी दोहराई है। युरीदून अली युत्फि नूरुल्लाहि बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलव करिहल काफिरून, याद आ रही है सूरत अनफाल की आयतें। वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें, और अल्लाह अपने नूर को कमाल तक पहुंचाने वाला है, गो काफिर बुरा माने। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलव करिहल मुश्रिकून, वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि इसे और तमाम मज़ाहिब पर गालिब कर दे अगरचे मुश्रिकीन नाखुश हों। आपने देखा कि ऊपर वाली आयत में काफिरों के नाखुश होने की बात थी या मुश्रिकों के नाखुश होने की बात है, अब आगे ईमान वालों को कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुन्जीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ऐ ईमान वालों क्या मैं तुम्हें वो तिजारत बतलाऊँ जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। बस तिजारत के साथ ना कान खड़े हो जाते हैं, प्रॉफिट, अच्छा इसमें कुछ हमारा फायदा होगा, वही बात है कि स्पेंड नहीं करो इन्वेस्ट करो। हाँ जब अल्लाह के रास्ते में कुछ करते हैं ना तो वो स्पेंड नहीं हो रहा होता, वो इन्वेस्ट हो रहा होता है। यहाँ सहाबे कराम को तो छोड़िए, आज उम्मते मुस्लिमा को एक पैगाम दिया जा रहा है कि तुम्हें अल्लाह के साथ एक तजारत करनी है। ये आयतें बिल्कुल सूरह तौबा की आयतों से मिल रही है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन वाली आयतें। तो यकीन कीजिए कि अल्लाह के रास्ते में जो जाता है वो जाता नहीं है, वो आता है। तो ज़रा से इस तजारत की मुख्तलिफ शिकें सुनिए। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम। अल्लाह ताला पर और इसके रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम में इल्म हो। अब जब कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ पैसा लगा रहे हो, कुछ वक्त लगा रहे हो, तो सवाल आता है इसके बदले में हमें मिलेगा क्या? बिजनेस डील हो रही है तो अल्लाह कहता है अब इसके रिटर्न में तुम्हें प्रॉफिट क्या मिलने वाला है? यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदख़िलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। तीसरी चीज़ व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अद, और पांचवी चीज़ ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और अगली चीज़ व उख़रा तुहिब्बूनहा, वो क्या है? नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब व बशिरिल मोमिनीन। आठ चीज़ें मैंने अपनी उंगलियों पे गिनी है, ज़रा सुनिए। अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे या लगाओगे अपने आप को तो क्या मिलेगा? अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा और तुम्हें इन जन्नतों में पहुँचा देगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और साफ सुथरे घरों में जो जन्नत अदन में होंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और तुम्हें एक दूसरी नेमत भी देगा जिसे तुम चाहते हो, वो अल्लाह की मदद और जल्द फतह याबी है। ईमानदारों को खुशखबरी दे दो, यानी आखिरत के वादे नहीं है, दुनिया भी मिलेगी, मुसलमानों तुम्हारी इज्जत होगी, लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे, लोग तुम्हारा दीन खुशी खुशी तुमसे लेंगे क्योंकि तुम बामल मुसलमान हो। करो क्या? अब फाइनल डील, आखिरी आयतों में देखिए क्या खूबसूरत मैसेज दिया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ। अल्लाह को मदद की ज़रूरत है? नहीं, अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ। जिस तरह हज़रत मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों से फरमाया कि कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बने, हवारियों ने कहा हम अल्लाह की राह में मददगार हैं। बस बनी इसराइल में से एक जमात तो ईमान लाई और एक जमात ने कुफर किया, तो हमने मोमिनों की इनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद की, बस वो गालिब आ गए। ये थी सूरह सफ़, और ये कंप्लीट पैकेज है। पता नहीं आपको कितना समझ आया, दिल जुड़े हों। इस पे एक पूरा कोर्स दो दफ़ा कराया है, यही नाम है उस कोर्स का, कान नाम गुंजान उमर सुन, सीसा पिलाई दीवार बनो। एटलांटा से करवाया इंस्टीट्यूट में, और इसी तरह ह्यूस्टन से करवाया टेक्सास से। अल्लाह ताला हमें बना दे, पूरी बिल्डिंग है इस्लाम की, ये जो बिल्डिंग है ना इसमें नीचे बुनियादें भी हैं, दीवारें भी हैं, छतें भी हैं, शीशे, जिस तरह ये बिल्डिंग का एक पूरा नक्शा है ना, इस्लाम का भी एक नक्शा है, उसके अंदर आपका मेरा किरदार ईंटों का बन जाए, बुनियादों में लगी हुई ईंट बन जाए। दुआ करके उठिएगा, दो पारे और रह गए बस। अल्लाह मुझे इधर की ईंट बना दे, मुझे इस शहर के अंदर बुनियादों में खपा दे, मेरी जान, मेरा माल, मेरा वक्त, मेरे बच्चे, मेरा घर बार सब टका दे, फिर आपका अजर कभी खत्म नहीं होगा। महाजरीन और अंसार के अजर की तरह अमल की बातें लेते हैं। मुसलमान के कौल और फेल में मुताबकत होनी चाहिए, इस्लाह उम्मत और खैर के कामों में माल खर्च करना भी जिहाद है। लिहाजा किसी ऐसे इदारे को माल दें जो उम्मत मोहम्मदिया की शान बुलंद करने के लिए काम कर रहा हो। दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको अंसारुल्लाह बना ले। अल्लाह की इताअत में इनहिराफ से बचना चाहिए क्योंकि ये दिल की गुमराही का सबब है, यानी मिसाल है कि अल्लाह की इताअत करने से इनकार नहीं करना चाहिए। जो बात करने की हिम्मत और नीयत ना हो वो मुंह से भी नहीं कहनी चाहिए। आज क्या? हाँ हाँ जरूर आऊंगी, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। और जिस पे दिल में इरादा ना हो ना करने का, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लफ्ज़ इंशाल्लाह को हमने क्या बना दिया? टालना, सिर्फ टाल दिया। अल्लाह हमें तौफीक दे नेकी की। ज़िंदगी में हर किस्म की बुराई से जिहाद करना है, हत्ता के दुश्मन से जिहाद का मौका आ जाए तो उससे भी पीछे नहीं हटना। गौर व फिक्र, भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने वाले के लिए मुनासिब है कि वो पहले खुद अमल करे। अल्लाह अपने बंदों को गुमराह नहीं करता, बल्कि बंदे खुद अपने अमाल की वजह से हिदायत का दरवाज़ा अपने ऊपर बंद कर लेते हैं। काफिर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, इसम फाइल का वजन है इधर, मुतिम ये नहीं कहा कि फेल है, जो तिम्मु नहीं कहा, क्योंकि जो इसम होता है ना उसमें जमाने की कैद नहीं होती, माजी हाल मुस्तकबिल में अल्लाह इस नूर को पूरा करके रहेगा, ये मुराद है। अपने कौल फेल जान और माल के जरिए अल्लाह के मददगार बन जाएं, कोई अच्छी सी नीयत करें। और अंसारुल्लाह बनने का पहला मरहला खुद कुरान सीखने के लिए खुद को ऑफर करें। आ गया जी सूरत जुमा, टोटल 11 आयतें, लेकिन इसकी तफसीर में कम अज कम 20 से 25 घंटे लगते हैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ तफसीर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहुलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द, अल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। सारी चीज़ें जो आसमान और ज़मीन में है अल्लाह की पाकी बयान करती हैं। जो बादशाह है नहायत पाक है, गालिब और बाहिकमत है, वही है जिसने अनपढ़ लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेजा। बोलिए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। जो इन्हें इनकी आयतें पढ़कर सुनाता और इनको पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, यकीनन ये इससे पहले खुली गुमराही में थे और दूसरों के लिए भी इन्हीं में से जो अब तक इनसे नहीं मिले, और वही गालिब और बाहिकमत है। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अपना फजल दे, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया गया फिर उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, इनकी मिसाल उस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें लादे हो। अल्लाह ताला की बातों को चुटलाने वालों की बड़ी बुरी मिसाल है, और अल्लाह ताला ऐसी जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। कैसी मिसाल दी है, देखे सूरत अल अराफ में कुत्ते की मिसाल दी गई थी उस दीन वाले की, कि दीन सीख कर भी दुनिया का कुत्ता बना रहे। यहाँ उस आलिम की दी गई है जो अपनी अक्ल का गलत इस्तेमाल करे। गधा जो होता है अक्ल के नाते से जरा उसके अंदर कुछ कमी दिखती है ना, तो आप देखिए कि मिसाल भी वही दी जो अमल है। आम दुनियादारों की राल टपकती है दुनिया पे, और दीनदार की अकल के होशियारी के साथ, समझदारी के साथ वो दीन के अंदर ऐसी तहरीफात कर दे कि किसी को कानो कान खबर ना हो। और यही खता उस कौम के उलमा से हुई थी, इसीलिए फरमाया कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम औलिया लिल्लाहि मिन दूनिन्नास फ़तमन्नवुल मौत। जब उलमा में तहरीफात आम होती है ना, तो पब्लिक जो होती है खुशफहमियों का शिकार हो जाती है। जैसे कि इधर आ रहा है, कह दीजिए कि यहूदियों, अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो दूसरे लोगों के सिवा, तो तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। ये कभी भी मौत की तमन्ना ना करेंगे बावजह इन अमाल के जो अपने आगे अपने हाथों भेज रहे हैं, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम। जिस मौत से तुम भागते फिरते हो वो तो तुम्हें पहुंच कर रहेगी, फिर तुम सब छुपे खुले के जानने वाले अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, और वो तुम्हें तुम्हारे किए हुए तमाम काम बतला देगा। मौत सर पे खड़ी है, पता नहीं कितनी दफा मलकुल मौत हमें झांक के जा चुके हैं इस जगह से। अल्लाह ईमान की मौत दे और ईमान वाली जिंदगी दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, अपने घर के मर्दों को इस आयत पे अमल करवाना है इंशाल्लाह। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, वो जुमे के दिन की नमाज की अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो फरोख छोड़ दो। ये तुम्हारे हक में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और बकसरत अल्लाह का जिक्र किया करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फला पा जाओ। किसी मुल्क पे घुन बरसे या उसके जमीन से तेल निकले या उसकी मादनियात सोना चांदी हीरे निकालें, उसका राज है इसमें कि जब अल्लाह पुकारे तो दुनिया को पीछे डाल दो। हय्या अलस्सलाह हय्या अलल्फलाह की पुकार आ जाए तो सब काम धंधा बंद। जुमे के दिन तो खास तौर पे जुमे के वक्त पे कमाने की इजाजत ही नहीं है, तो फिर इस बात को भी देखिए कि हमारी कमाइयों में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। एक वाक्या हुआ था जिसकी तरफ इशारा इधर, वह इजारा उ तिजारतन, और जब कोई सौदा बिकता देखें या कोई तमाशा नजर आ जाए तो इसकी तरफ दौड़ जाते हैं और आपको खड़ा ही छोड़ देते हैं। कैद के दिन थे, काफिला जब आ गया सामान का तो उठ के चले गए, अभी तरबियत नहीं हुई थी, नए नए लोग थे, और अल्लाह के नबी खुतबा देते हुए खड़े रह गए। अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या हो गया, आप कह दीजिए कि अल्लाह के पास जो है वो खेल और तिजारत से बेहतर है, और अल्लाह ताला बेहतरीन रोजी रसा है। जुमे की नमाज के साथ हमारा क्या मामला है? अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क में नमाजों के औकात पे एक रौनक दिखती है, मस्जिदें भी भरी लगती हैं। लेकिन दुनिया के हर बंदे से ये कहूंगी जो जहां से भी सुने अपनी नमाजों का एहतमाम कीजिए और खास तौर पे जुमे का। यहाँ एक बड़ा खूबसूरत कॉल है। इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्ला फरमाते हैं, अहले जन्नत के आमद के दिन जियारत यानी दीदार इलाही के हसूल के लिए इस कदर करीब होंगे कि एक दूसरे से सबकत करेंगे जिस कदर वो दुनिया में जुमे के दिन खुतबा जुमा सुनने के लिए जल्दी आएंगे और इमाम के करीब होकर बैठेंगे। यानी जो जल्दी जाएगा वो पहली सफ में बैठेगा, इमाम के करीब होगा, आवाज अच्छी आएगी, फोकस होगा, बीच में चीजें नहीं दिखेंगी। तो वो जो दुनिया में आगे आएगा वो अल्लाह से मुलाकात में सबसे आगे बैठा होगा। और जन्नत में भी दिन होगा जुम्मे का, उसको यौमुल मजीद कहेंगे, जिस दिन जाकर लोग अल्लाह तआला से मुलाकात करेंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। तदब्बुर और अमल, जुमे की नमाज के लिए जल्दी करनी है, अल्लाह से उसका फजल मांगना है, अल्लाह से हुस्ने खात्मा की दुआ करनी है, अपने इल्म पर अमल करने की कोशिश करें और अपना तज़किया नफ्स करते रहें। नमाज जुमा को अपनी तिजारत और ज़ाती फ़ायदों पर फोकियत देनी है, कुरान को समझ कर पढ़ना, अमल करना और इससे फिर अपना तज़किया करना है। गौर व फिक्र के नुक्ते, दावत और तबलीग में सबसे पहले वही की तबलीग, फिर तज़किया, फिर कुरान की तालीम का जिक्र किया गया। कुरान का इल्म रखने वाला शख्स जो इस पर अमल ना करे, इसका हक अदा ना करे, उस गधे की तरह है जिसने किताबों का गट्ठड़ लाद दिया हो। इताते इलाही पर सब्र करने से रिस्क कम नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह का तकवा रोजी के असबाब में से है और अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे। जिससे मोहब्बत होती है बंदा उसको मिलने के लिए भाग भाग के नहीं जाता, एयरपोर्ट पे वक्त से पहले ही पहुंच जाते हैं कि नहीं शायद आज फ्लाइट जल्दी ना आ जाए। तो अल्लाह से मोहब्बत होगी तो मस्जिदों में, इदारों में, कुरान के लिए, नमाज के लिए आना आसान होगा।